ओम शांति। आप सभी ने आज मुरली सुना ना? किसने नहीं सुना? अच्छा, तो बाबा कहते हैं मुरली सुनने के लिए, तो मुरली सुनने का तरीका क्या है मालूम है? मुरली कैसे सुनना चाहिए बताइए जी। और कैसे सुने? जी मनन चिंत सुनते समय, जब मुरली सुन रहे हैं उस समय क्या करें, कैसे सुने? सभी उत्तर सही है। आत्मिक स्थिति भी होनी चाहिए, मनन चिंतन भी होना चाहिए। तो मुरली सुनने का तरीका बाबा ने बताया है अव्यक्त मुरलियों में, कि मुरली कैसे सुने, कि जब भी कोई बात होती है, जैसे बाबा कुछ सुना रहे हैं मुरली में, जैसे बाबा कहते हैं सोमनाथ, सोमनाथ के बारे में जो ही बाबा कुछ कहते हैं क्या करें? बाबा कहते हैं सोमनाथ, तो हम क्या करें उसके साथ? जब बाबा कहते हैं सोमनाथ, चाहे अमरनाथ या किसी भी शहर का नाम लेते हैं या कोई सेवा का नाम लेते हैं, तो जो ही बाबा कहते हैं उसे हमें क्या करना है? हाँ, उसी समय उसको देखना है, सामने पहुंच जाना है वहां। तो जो भी बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, जैसे हम देखते हैं ना मूवीज में या पिक्चर में, ऐसे उसको हमको देखते जाना है, जो भी बाबा कह रहे हैं उसको देखना है। तो ऐसे जब देखेंगे तो मुरली याद भी रहेगी, क्योंकि दृश्य याद हो जाते हैं इजली, है ना? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब भी आप मुरली सुनते हैं और बाबा जो भी बातें बताते हैं उसे हमें तुरंत साथ ही साथ अनुभव करते जाना है, ठीक है? तो आज बाबा ने क्या कहा आज की मुरली में? राम जी और श्रृंगार है। पवित्रता क्या है? ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। यानी हम पवित्रता से कहाँ कहाँ सजना है हमको, है ना? श्रृंगार किससे करते हैं? कभी भी जब श्रृंगार करते हैं तो कहाँ कहाँ श्रृंगार करते हैं, इतना तो मालूम होगा ना? है ना? तो श्रृंगार अर्थात हाँ, जो भी सजाओ, क्या क्या सजाते हैं? आंखों को, है ना? शरीर के हर अंग को ना, लगभग फेस को। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि एक पवित्रता है ना, पवित्रता को अपनाने वाले और पूजनीय बनने वाले केवल इस समय नहीं, पूरे कल्प में बहुत थोड़ी सी आत्माएं होती हैं जो क्या बनती हैं? पवित्र बनती हैं पूरी तरह से। क्योंकि आज बाबा ने यह भी कहा ना, कोई कुछ भी कर ले जाए लेकिन यदि खंडित है उसकी पवित्रता, तो उसकी क्या नहीं हो सकती? पूजा नहीं हो सकती। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि पवित्रता का इतना महत्व है ना? जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे शरीर है आपका, शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, आपका सभी अंग बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आंखें ठीक नहीं है तो आंखों से दिखाई नहीं देता है तो कैसे दुनिया हो जाती है? सब कुछ होते हुए भी जीवन में क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है ना, है ना? तो इतना महत्व है पवित्रता का, है ना? जितना महत्व हमारे जीवन में इस शरीर में आंखों का है, इतना ही महत्व हमारे जीवन में किसका है? पवित्रता का है, है ना? जैसे हमें, इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसे ही जैसे आंखों का महत्व है, ऐसे ही पूरे कल्प में और इस समय संगम पर भी सबसे ज्यादा महत्व किसका है? किसका है? पवित्रता का। और आत्माओं में ब्राह्मण आत्माओं का है ना, ब्राह्मण आत्माओं का महत्व सबसे ज्यादा है। क्यों? क्यों कि बात जी, क्योंकि ब्राह्मण ही है जो बाबा की श्रीमत के अनुसार है ना, और संपूर्ण पवित्र बनते हैं, है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे ये नयन है ना, ये नेत्र इस शरीर के लिए आवश्यक है, ऐसे ही आप आत्माओं का महत्व इस पूरे कल्प में है ना, और इस युग में भी सबके लिए हो जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है? हाँ, जब आपकी चढ़ती कला होती है तो विश्व की भी क्या होती है? चढ़ती कला। और जब आपकी उतरती कला होती है तो आप कहीं डगमगाते हैं तो पूरा विश्व, तो सब सारा दारोमदार, सारा मदार मदार पूरे कल्प का कहिए, सारे विश्व में सबका आधार कौन है? ब्राह्मण आत्मा है ना? तो ब्राह्मण आत्माएं जितना दृढ़, जितना पवित्र है ना, तो इसलिए हमें देखना है कि हम इससे हमें क्या समझना चाहिए। ये तो ठीक है कि ये बहुत बड़ा महत्व है कि हम जैसे होते चलते हैं ऐसे सारा विश्व चलता है, तो इससे हमें क्या समझना चाहिए? सौभाग्यशाली हैं। और लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी हो जाती है ना, एक जिम्मेदारी भी हो जाती है। क्या? कि यदि हम भटकेंगे सारा विश्व भटकेगा, है ना? और अगर हम तो अगर हम पवित्रता से जितना श्रृंगारित होंगे, जितना पवित्रता से श्रृंगार करेंगे, उतना उस श्रृंगार को विश्व भी अपना सकेगा, है ना? और क्या कहा बाबा ने जी? बाबा ने कहा कि सबके लिए, सबके लिए पढ़ाई कैसी है? एक ही पढ़ाई है, एक ही जैसी है ना, लेकिन क्या अंतर हो जाता है? और जी हाँ, और तो जितना हम पवित्रता को अपनाते हैं, है ना, जितना पवित्रता को हम धारण करते हैं, तो उसी के आधार पर नंबर भी बन जाता है ना, माला भी बन जाती है। अब पवित्रता किस किस रूप में अपनाया जाता है? मन, वचन, कर्म और किसमें, हाँ संबंध संपर्क भी बाबा ने कहा वो कर्म में आ गया है ना, और किसमें, स्वप्न में भी है ना, बाबा ने कहा ना स्वप्न में भी है ना जी। हाँ तो चेहरा और चलन तो है, तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा कि जब स्वप्न में भी कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है या ऐसा कोई स्वप्न देखते हैं अपवित्रता का भी या कोई संबंध का, तो क्या होता है उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, पूरे दिन की दिनचर्या पर पड़ने लगता है ना। तो बाबा ने ही कहा कि अगर एक स्वप्न भी जो है हमारी दिनचर्या को इतना डगमगा देता है, हमारी दिनचर्या को इतना हिला कर रख देता है, तो जब हम जागृत हैं चैतन्य अवस्था में जगे हुए उस समय कोई अगर अपवित्रता का कार्य हो जाता है चाहे संबंध संपर्क में ही चाहे संकल्प में ही केवल, तो क्या उसका रिजल्ट होगा, तो ये बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा कि आपके जो हर कर्म है, हर कर्म सुबह से लेकर रात तक है ना, शाम तक है ना, जो भी आपकी दिनचर्या है ना, वो क्या होती है, जो भी आप दिनचर्या है उसमें आप जितना बाबा को हम बाबा की जो श्रीमत है उसको हम धारण करते हैं उसके आधार पर हम पवित्र बनते हैं, तो जितना जितना हम बाबा की बातों को मानते हैं या श्रीमत पर चलते हैं तो उतना हमारी हर एक एक एक्ट की क्या होती है, पूजा होती है। और बाबा ने क्या कहा कि यदि आप चला देते हैं, आप भी चला देते हैं, चलो चल हाँ, तो क्या होगा, बाबा ने क्या कहा, आप चला देंगे तो आपके भक्त भी चला देंगे, भक्त भी क्या कहेंगे, चलो ऐसे ही कर लेते हैं पूजा थोड़ा मोड़ा है ना, वो भी सफाई से नहीं करेंगे, चलते फिरते ऐसे ही कर देंगे पूजा हाँ। तो इसीलिए इतना ध्यान रखना है, ध्यान रखना चाहिए सही है। और मान लीजिए अगर आपकी पूजा नहीं हो तो पूजा नहीं हो तो बोलिए, अगर आपकी पूजा कोई नहीं करता है तो उससे कोई नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है अच्छा। और कई लोग सोचते होंगे ना हमारी पूजा हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, सही है क्या है इसकी मीनिंग क्या है, कुछ मालूम है, अगर पूजा होता है होती है तो उससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये भी समझना चाहिए ना हमें है ना। तो क्या होता है कि जो हमारा मन है ना ये तीन रूप से काम करता है ना, एक कहते हैं चेतन अवस्था है ना, कॉन्शियस है ना, जैसे अभी हम जगे हुए हैं तो चैतन्य अवस्था जिसमें हम कोई भी बात को समझ सकते हैं सुन सकते हैं। दूसरा क्या होता है जिसको आजकल बहुत इस पर बहुत स्टडी हो चुका है जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड जिसमें क्या होता है अर्ध चेतन, माने जैसे चेतन अवस्था है अभी जो जगे हुए हम सुन रहे हैं, और दूसरा है सबकॉन्शियस मन अर्ध चेतन, चेतन है लेकिन पूरी तरह से नहीं, आधा ही है लगभग समझिए, उसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तीसरा क्या होता है? अनकॉन्शियस, बिल्कुल अनकॉन्शियस उसको क्या कहते हैं, जिसका बिल्कुल होश आवास ही न हो, है ना। तो तीनों का जो असर है बाबा, जो कहते हैं, जो मुरली सुनाते हैं बाबा, जो हम सुनते हैं, तो देखने में बहुत सहज है, लेकिन ये छोटे छोटे जो बाबा हमें टिप्स बताते हैं या जो श्रीमत देते हैं, इससे जब हम एक्सेप्ट करते हैं, उसके आधार पर चलते हैं, तो हमारा सभी कुछ चेंज होता है। तो जैसे चेतन अवस्था है, चैतन्य अवस्था, इसमें कुछ भी हम कहेंगे तो आप समझ सकते हैं, है ना। और सबकॉन्शियस माइंड, जो बात हमारे अंदर चली गई है वो आप निकालना भी चाहो तो नहीं निकल पाएगी। लोग कहते हैं ना, हम चाहते तो हैं ये बात भूल जाए, लेकिन ये निकलती नहीं, क्यों? वो बात अंदर समा लिया, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। तीसरा होता है अनकॉन्शियस, जो मन का तीसरा रूप है, अनकॉन्शियस होता है। अनकॉन्शियस मीन्स, आप लोग सुने होंगे आजकल, आजकल बहुत लोग किस में चले जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं ना, कोमा में, अर्थकॉन्शियस सालों तक ऐसे ही रहते हैं कोमा में। तो ये जो मन है उसका क्या प्रभाव होता है? वो उसी के आधार पर वो अपने सारा शरीर को भी क्योर कर लेता है, उसे वो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि जो ब्रेन है उसको बहुत काम काम करना पड़ता है, 5-10% ही, बाकी 90% वो जहां चाहे वर्क कर सकता है। इसीलिए बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो डॉक्टर नहीं कर पाते हैं, वो कोमा में व्यक्ति खुद ही हो जाता है, जिसको कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। तो इसका भी इतना वैज्ञानिकों को भी इतना स्टडी नहीं हो पाया है, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पर स्टडी किया इन लोगों ने, लेकिन इसमें बहुत कम है। तो इसीलिए जब कोई भी आपके बारे में सोचता है, इसका एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे जानकी दादी कहती एक बार कि दादी जब बाबा के पास थी कराची में, तो दादी को बहुत उदासी जैसा, अकेलापन जैसे, उदासी जैसी फीलिंग आती थी। तो दादी ने कहा बाबा को, बाबा मुझे बहुत उदासी रहती है, जबकि मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ, मुरली भी पढ़ती हूँ, योग भी ठीक है, सब कुछ मेरा ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे उदासी जैसी होती है। तो बाबा ने क्या कहा मालूम है? बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, बच्ची इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा सब ठीक है, मुरली भी है, अमृत बेला भी है, सब कुछ, योग भी आपका ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन आपके उदासी के पीछे कारण ये है कि आपके लौकिक घर वाले आपको बहुत मुंह से याद कर रहे हैं। समझ में आया? तो कई बार आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, लेकिन ऑटोमेटिक स्थिति आपकी गिरती कला के हो जाएगी, जैसे कोई उदासी जैसी आ जाएगी। तो इसमें आपका कोई दोष नहीं होता है, उसके पीछे क्या होता है? आपको कोई कैसे याद कर रहा है, उसका प्रभाव पड़ जाता है, है ना। कोई आपको याद कर रहा है और आपको याद करते ही उसके अंदर बहुत दुख की अनुभूति होती है, आपने मुझे बहुत तकलीफ दिया है, ऐसे करके वो वाइब्रेशंस सब दुनिया में कहीं भी हैं, वो वाइब्रेशंस काम करेगा, है ना। और इसीलिए अगर किसी का आपने भला किया है, किसी को मदद किया है, और वो जब प्यार से याद करता है, आपके लिए दुआएं रखता है, तो आप दुनिया में कहीं भी हैं, ये दुआएं आपको मदद करती है। इतना महत्व है, ऐसा ना सोचे कि हमारी पूजा नहीं हुई तो क्या हुई। तो इसीलिए हमारी एक्ट ऐसी होनी चाहिए, है ना, देवताओं मिसल होनी चाहिए, हमारी दृष्टि भी कैसी होनी चाहिए, हमारी मुस्कुराहट भी कैसी होनी चाहिए, हमारा चलना फिरना भी कैसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कभी ये सोच के हल्का नहीं हो जाना, हमारा पूजा नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोई भले हमको गाली दे तो क्या हुआ। वो अलग बात है कि मान अपमान सब में एक रस रहना है, लेकिन हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे किसी को पीड़ा हो, किसी को तकलीफ हो। तो ऐसा हमें, इस बात से हमें दो चीजों का ध्यान रखना है कि हम जब पवित्र बनते हैं, हमारा चेहरा, हमारी चलन, हमारा संबंध संपर्क, हमारा स्वप्न जो भी है, तो इतना श्रेष्ठ हो कि हमें यह भी देखना है कि जैसे देवताओं के लिए कहते हैं वो हरि के मददगार है, ऐसे वो कर्तव्य हमें अभी करना है ना। सतयुग में देवताएं थोड़ी ना ये कर्म करेंगे, सतयुग में तो क्या है, प्रारब्ध है देवताओं का, है ना। सतयुग में देवताएं कोई थोड़ी दर्शन देने के लिए आएंगे, किसी को मदद करने आएंगे, नहीं, वो तो जैसे उतरती कला होने लगती है, एक जन्म बीता तो थोड़ा सा गिरावट और थोड़ा थोड़ा गिरावट। केवल जो देवताओं का कर्तव्य है वो हम कब कर सकते हैं, अभी इसी समय, इसका ध्यान रखना है ना। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, जो जितना पवित्र है ना, उतना ही उसकी विधि पूर्वक पूजा होगी। अगर पूरा पवित्र नहीं है, है ना, खंडित है, खंडित है मीन्स क्या दिखाते हैं, वहां खंडित कैसे दिखाते हैं, कोई भी मूर्ति आदि होती है ना, तो मूर्ति को खंडित क्या मानते हैं, कैसे कहेंगे खंडित है, हाथ पांव या कुछ भी कुछ टूट गया है, या मुकुट कहीं टूट गया है, तो ऐसी मूर्ति को क्या करते हैं, उसको ऐसे भी बाहर दुनिया में भी खंडित मूर्ति को रखते नहीं है, अपशकुन माना जाता है। और इसीलिए आज बाबा ने कहा मुरली में कि खंडित की, जिसकी पवित्रता खंडित है, वो कभी पूजनीय हो ही नहीं सकता। इतना ध्यान हमारा रहे कि हमें इतना पवित्र, अदरवाइज क्या होगा, जो खंडित है उसको कहां रख देंगे, म्यूजियम में रख देंगे, और जो पूरी तरह से पवित्र है उसकी पूजा होगी एक एक एक्ट की, है ना। और खंडित मीन्स जो मूर्ति के अंग खंडित है, उसको बाबा ने क्या कहा, किस तरह का खंडित है वो, जैसे वो अंग को खंडित दिखाया है, ऐसे यहां जो पवित्रता की स्थिति जो खंडित होती है उसको मूर्ति में, अंग का जो खंड हुआ, किसी अंग कोई खंडित है तो इसका कनेक्शन है ना। तो इसलिए जो पूरी तरह से पवित्र है उनकी तो पूजा होगी, लेकिन जो पवित्र नहीं है उनका क्या गायन होगा, वो जैसे म्यूजियम में रखते हैं ना, म्यूजियम में कोई बहुत पुरानी मूर्ति, कोई टूटी फूटी मूर्ति रखी है, तो उसमें क्या लिखा होता है, ये 500 साल पुरानी मूर्ति है ना, ये खुदाई में मिली थी यहाँ 1200 साल पुरानी मूर्ति है, तो केवल ये वर्णन होगा, है ना, लोग देखेंगे अच्छा इतनी पुरानी है मूर्ति, यहाँ खुदाई में निकली, अच्छा, तो लोग ये जस्ट जानकारी के लिए, उसके लिए कोई खास है ना। लेकिन जो ही कोई मूर्ति को मंदिरों में देखते हैं, जो अपनी स्थिति में स्थित है, तो क्या होता है, स्वतः क्या हो जाता है, ना सिर झुक जाते हैं ना, उनके सिर झुक जाते हैं, उनके लिए उनका कितना रिस्पेक्ट होता है, कितना रिगार्ड होता है ना। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि वो वहां कौन आते हैं मंदिरों में, भक्त आते हैं ना, भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, हर एक एक एक्ट की पूजा भी करते हैं। लेकिन म्यूजियम में, म्यूजियम में क्या करते हैं, म्यूजियम में केवल गायन है ना, उसके बारे में कि ये इतनी साल पुरानी है। ऐसे यहां भी क्या होता है ब्राह्मण जीवन लाइफ में भी, कोई बहुत कम समय, जैसे बाबा कहते हैं ना कि कोई भले 5 साल ज्ञान में अगर है तो उसका 5 साल ही जुड़ेगा, 100% हो गया। और कोई मान लीजिए 20-25 साल से ज्ञान में है, लेकिन नियम प्रमाण नहीं चलता है जस्ट, तो क्या कहेंगे, ये बहुत पुराने हैं ना इतने ज्ञान में। लेकिन कोई क्वालिटी का वर्णन नहीं होगा कि इनके पास ये सिद्धि है, ये इन्होंने प्राप्त किया, ये गेन किया है, बस क्या कहेंगे, ये इतने साल से ज्ञान में। लेकिन उतने साल से ज्ञान में जीवन में क्या चेंजेस आए, क्या परिवर्तन आया है, इसका वर्णन नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि इतना ध्यान हमें पवित्रता पर होना चाहिए, पवित्रता को इतना हमें अपने जीवन का श्रृंगार बनाना है, हर एक एक एक्टिविटी में, अंग अंग में इसे हमें धारण करना है ना। ऐसे ही बाबा ने कहा स्वप्न में भी, स्वप्न का भी इतना प्रभाव पड़ जाता है। तो स्वप्न के लिए भी क्या कहते हैं, इसीलिए स्वप्न के लिए भी, इसीलिए बाबा कई बार साकार मुरलियों में कहते हैं कि यदि अपने को देखना है कि मैं ब्राह्मण लाइफ में मैं कितना आगे बढ़ रही हूं, चाहे बढ़ रहा हूं, कितनी मेरी उन्नति हो रही है, तो केवल चार्ट के आधार पर नहीं, लेकिन कैसे, बाबा कहते हैं कि आप अपने स्वप्न को देखें, मेरा स्वप्न कैसा है ना, स्वप्न से आप समझ सकते हैं मेरी स्थिति कैसी है। तो इतना हमें अटेंशन होना चाहिए स्वप्न पे भी, ठीक है। और क्या कहा बाबा ने, और बताइए, हाँ जी जी, और जी किसी भी प्रकार का, ये कोई साधारण बात नहीं है, आलस्य या आलबेलापन भी, आलस्य या आलबेलापन भी क्या करता है, हमें वंचित कर देता है ना। केवल ये बड़ी बात नहीं है कि आप कितना महान कार्य कर रहे हैं, लेकिन महान कार्य आप कितने समय में उसको कर ले रहे हैं। अगर आलस्य अलबेलापन है तो हमारा बहुत ज्यादा समय चला जाता है उसमें, बहुत सारी छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन जाती है, बिगड़ जाती है ना पूरा, उसको फिर आपको ठीक करने में टाइम लगता है। और समय के साथ साथ करते हैं तो बहुत सहज होता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आलस्य और अलबेलापन भी क्या है, और बाबा ने क्या कहा कि हमें कर्म द्वारा क्या करना है, हाँ, गुणों का दान करते तो क्या हो जाता है, डबल लाइट, है ना, फरिश्ता बनते हैं। और क्या फील करते हैं इसमें, फिर क्या फील करते हैं, प्रकाश का, है ना, बाबा ने कहा ना, प्रकाश की काया यानी लाइट का बॉडी, है ना, कैसे होते हैं फरिश्तों का, फरिश्ते कैसे होते हैं, लाइट की बॉडी, प्रकाश का। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं कि अगर अपने को आत्मा नहीं समझ सकते तो भी कम से कम क्या फील करो, लाइट का बॉडी। बाबा कहते हैं दूसरे को भी, चलो आप बहुत मजबूर हो, आत्मा नहीं देख पाते हो, प्रैक्टिस नहीं है, तो भी क्या करो, तो भी क्या करो, बाबा ने कहा लाइट का बॉडी देखो, ऐसे ही कहते हैं ना बाबा। तो जितना हम ये अनुभव करते रहेंगे, है ना, तो स्वतः यानी कर्म द्वारा हम गुणों का दान करेंगे तो स्वतः क्या होगा, लाइट के बॉडी में ऐसा फील होगा। और दूसरा क्या होगा, हमें ये नहीं लगेगा कि हम कर रहे हैं कोई कार्य, बल्कि क्या होगा, लगेगा कि क्या कहा बाबा ने, कोई शक्ति चला रही है, हमको चलना भी नहीं पड़ रहा है, हमको करना भी नहीं पड़ रहा है, स्वतः कोई शक्ति हमें चला रही है, है ना। तो ये स्वतः ये फीलिंग होगी, तो ये हमें प्रैक्टिस हमेशा करना है कि हमारे कर्म द्वारा गुणों का दान होता रहे, मीन्स हमारे कर्म द्वारा हर एक सीखे कोई भी। तो जैसे ये तो आज की मुरली में नहीं है कि मनसा द्वारा किसका दान करें, मनसा द्वारा किसका, जैसे कर्म द्वारा बाबा ने कहा गुणों का दान देना है ना, तो मनसा द्वारा किसका दान देते हैं, और इसी को बाबा दूसरी बात शब्दों में कहते हैं कि मनसा द्वारा में क्या करना है, शक्तियों का दान, है ना। जैसे आप खुश हैं, बहुत खुश हैं, कहीं बहुत खुशी में हैं, तो आपको देखकर सामने वाले भी क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और कोई प्रेरणा लेते हैं, है ना, कि हमें भी ऐसे रहना है, तो ये भी क्या हो गया, गुणों का दान है। ऐसे मनसा द्वारा हम शक्तियों का दान, मनसा द्वारा किसी के लिए गुड विशेष, किसी के लिए बदलने की भावना, है ना। तो जितना इसका हम ध्यान रखेंगे, मीन्स अपने एक्टिविटी पे, अपने कर्म पे, फिर बाबा ने क्या कहा, सेवा में क्या बनो, कैसा नहीं बनो, कमजोर नहीं बनो, है ना। तो इसीलिए कमजोर नहीं बनो मीन्स कैसे कहें, किसको कहेंगे कमजोर, कमजोर नहीं बनो माना किसको कमजोर कहते हैं बाबा, बताइए जी, जी किसको कहेंगे, तो यही है कॉन्फिडेंस ना, कॉन्फिडेंस कब आता है, जब हम इस बात को समझते हैं कि हम किसका कार्य करने जा रहे हैं, किसकी सेवा करने जा रहे हैं और कौन कराने जा रहा है, तो हो गए ना सफल। कमजोर कब बनते हैं, जब क्या हो जाता है, दो चीज है इसमें सब समाया है। कमजोर कब हो जाते हैं, जब भूल जाता है ना। हनुमान को दिखाते हैं ना, हनुमान भूल गया तो चुपचाप बैठा था, है ना। उसे याद दिलाया गया है ना कि आप तो इतने शक्तिशाली हो, आप ये कर सकते हो, है ना, वो तैयार हो गया। ऐसे हम ब्राह्मण भी भूल जाते हैं ना, लेकिन बाबा जब मुरलियों में याद दिलाते हैं कि आप कौन हो, है ना, आप तो पूजनीय हो, है ना, आप सारे विश्व का आधार मूर्त हो, तो हर तरह से जब ये बातें याद आती हैं तो सेवा में भी हम सफल होते हैं ना। हमारी सेवा ही क्या है इस समय, सेवा क्या है हमारी, सेवा ही हमारी क्या है, पवित्र बनना और बनाना, है ना। हम जितना जितना पवित्र बनते हैं, है ना, तो इससे भी क्या होता है, दूसरे को भी मदद मिलती है और हम दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं, है ना। तो इसलिए इतना हमें ध्यान रखना है कि हमारी याददाश्त याद में हो। हम जितना याद रखेंगे उतना ही हमारे अंदर शक्ति आएगी, और जितना हम भूलेंगे उतना ही कमजोर बन जाएंगे, है ना। तो सफलता के पीछे सारा यही काम करता है, यही पॉइंट काम करता है कि सबका आधार है स्मृति या विस्मृति। अगर स्मृति है तो आप हर जगह सफल होंगे, अगर विस्मृति है तो कमजोर बन जाते हैं, और कमजोर बन जाएंगे तो हर जगह पराजित होंगे। ठीक है, और किसी को पूछना है कुछ आज की मुरली से, आज की मुरली का। और सब कुछ याद है, तो इसलिए हमें मुख्य हमारा ये है मकसद कि हमको पवित्रता के ऊपर ध्यान देना है ना। आंखें कैसी हो हमारी, आंखों में जब हम बाबा को बसाते हैं, है ना, तो क्या बन जाते हैं, बाबा के नैनों के नूर बन जाते हैं। तो हम हर अंग से, अंग अंग से ऐसे ही हम अपनी पवित्रता को चेक करेंगे, है ना। हमारे हाथों से कैसे हो, हमारे होठ कैसे हो, होठों पे क्या हो, मुस्कान, हाथों से क्या करें, कर्म यानी सेवा में सहयोगी, है ना। तो हर कर्म द्वारा बाबा को, है ना, प्रत्यक्ष करना या बाबा की मदद करना, है ना। तो इस आधार पर हम जितना जितना ध्यान देंगे अपनी पवित्रता पर, है ना। तो इसीलिए हमें ये कर्तव्य भी करते जाना है पवित्रता का, कि अगर हम देवता के स्वरूप में हैं तो सारे विश्व की आत्माओं को इस समय हमें देवता के स्वरूप से मदद करना है ना। क्योंकि कोई पूजा हमारी क्यों करेगा, पूजा क्यों करेगा, जब हम किसी का सहयोगी बनेंगे, किसी के जीवन में मदद करेंगे, है ना। तो इसीलिए जब हमें कोई, जैसे हमने एग्जांपल बताया आपको दादी का, कि ये भी काम करता है कि जब आप किसी को भी याद करते हैं, जिस भी, जैसे कहा कि उनके लौकिक वाले याद करते थे तो इनको भी उदासी आती थी, ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं कि आप जब क्या करते हैं, आप जब बाबा को याद करते हैं, है ना, तो क्या होता है, बाबा को आप जिस रूप से और जितना पावरफुल रीति से याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं उतनी ही फोर्स से, उतना ही पावर से बाबा भी आपको याद करते हैं, कम नहीं, है ना, जिस भी रीति से याद करते हैं बाबा को, है ना, चाहे किसी भी संबंध से, तो हम जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही क्या होगा, बाबा भी हमें याद करेंगे, तो इससे क्या होगा, बाबा हमें याद करेंगे तो कुछ होगा क्या, समझ में आ गया ना दादी की बात, दादी की बात चाहे हम लोग अभी भी फील करेंगे, अनुभव कर सकते हैं, जैसे दादी को उन लोगों ने मोह बस याद किया तो दादी को भी दुख की अनुभूति हुई ना थोड़ी, तो जब कोई दुखी आत्मा याद करती है दुख की रीति से, तो वो दुख के वाइब्रेशन से, और स्वयं भगवान आपको याद करे तो क्या होगा बताइए, तो भगवान से जब कनेक्शन हो गया, भगवान की याद आपके पास आ रही है, तो स्थिति कितनी उच्च होगी। तो ऐसे सारे विश्व की आत्माएं जब वो याद करती है ना देवता के स्वरूप में या देवी के स्वरूप में, तो ये वाइब्रेशंस किसके पास आते हैं, किसके पास आते हैं, जो भी भक्त आत्माएं हैं वो जब याद करती हैं तो वाइब्रेशंस, वह कनेक्शन भी, उनका भी कनेक्शन किससे हो जाता है, ब्राह्मण आत्माओं से, है ना, क्योंकि डायरेक्ट बाबा नहीं करते उनका, डायरेक्ट बाबा भी केवल भक्तों का की इच्छाएं नहीं पूरी करते हैं, उसके संकल्प पूरा नहीं करते हैं, कैसे करते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा, है ना, ऐसा कारण क्या है इसका, इसका भी कारण क्या है, जैसे बाबा कहते हैं ना, जैसे कोई हनुमान का भक्त है तो उसके आगे अगर बाबा खुद को प्रत्यक्ष करे तो क्या होगा, जी संतुष्ट नहीं होगा, वह जिसको चाहता है जिससे मिलना उसी को देखना चाहेगा ना, तो इसीलिए इस विश्व में भी जो हर एक आत्मा है ना उसका कोई न कोई से कनेक्शन है, भगवान से कनेक्शन है, भगवान से हर एक आत्मा कनेक्शन, बट प्लस उसके साथ साथ, जैसे कहते हैं ना सूर्य, सूर्य का कुछ चक्कर लगा रहा है, कोई धरती का चक्कर लगा रहा है, हर एक का, तो ऐसे हर एक आत्मा के आपके आसपास भी कोई होंगे जो आपके प्रभाव में होंगे, बाबा को याद करेंगे लेकिन साथ आपको भी रखेंगे, कोई होगा आपका भी भक्त, है ना, जो आपसे प्रभावित है, जो प्रभावित हो जाते वही हो गया ना भक्त, समझ रहा है, तो इसीलिए हमारा अभी ही जितना दैवी एक्ट चलेगा, हम जितना दैवी स्वरूप से हरे की पालना करेंगे, तो अभी ये कहते हैं कि बाबा कि यही जो हमारी पालना है, जब उनको पालना देते हैं अपने स्वरूप से, तो बाबा कहते हैं ये उनके अंदर भर जाता है, और फिर द्वापर युग से उनके ये जो उनके अंदर जो ये संस्कार भर गया या पालना, वह फिर से जब याद करेंगे तो वह फिर आपको रिटर्न होगा, तो पूरा आधा कल्प सतयुग त्रेता तो हम अपने पुरुषार्थ के आधार पर चलेंगे, द्वापर कलयुग से भी इसके आधार पर भक्तों की पालना होती है, और इसीलिए बाबा कहते हैं कि अमृत वेले, अमृत वेले आप क्या करो, अमृत वेले अपने में याद से इतनी पावर भर लो, इतना पावर भर लो, बाबा से इतनी दुआएं लो जिससे क्या हो सके, पूरे दिन आप चल सको। और पूरे दिन में इतनी दुआएं लो, है ना, किससे, जिनके संबंध संपर्क में है उनसे भी। तो बाबा कहते हैं वो जो दुआएं लेते हैं ना, वो दुआएं उनके अंदर भर जाती है और उससे फिर आपकी द्वापर से वो पालना होगी, उसके आधार पर भक्त बन जाएंगे आपसे, है ना। जिसको भी आपने सुख दिया, मदद किया, वो भूलेंगे नहीं, है ना। तो इसलिए हमें ये पाठ हमें बजाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपको रहम नहीं आता है अपने भक्तों पर, जो भी भक्त हैं उन्हें क्या करो, है ना, जो भी भक्त हैं उन पर रहम, है ना। तो ये जब हम रहम करते हैं तो रहम से भी क्या हो जाता है, क्या हो जाता है रहम से, हम अगर किसी पर रहम करते हैं तो इससे कुछ होता है जी। अभी एक दो दिन पहले कहा था ना बाबा ने स्लोगन में था, रहम से क्या होता है, परिवर्तन। किसी भी आत्मा को हम रहम से परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। आप यदि किसी पर रहम करके कोई बात समझाते हैं तो वो समझेगा, वो अपने को चेंज लाएगा। लेकिन यदि आप किसी को टोंट वे में किसी को टोंट बोलेंगे या बोलेंगे ऐसा कर लो तो, है ना, कभी बदले नहीं होगा। वो कहेगा हम बदल लेंगे, इनके कहने से तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, है ना, ऐसा क्यों। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते हैं रहम से हमें किसी को भी चेंज करना है तो रहम से चेंज कर सकते हैं। दूसरा है कि हमारे रहम से ही आत्माओं के पाप भी खत्म होंगे, क्योंकि ये हमें ही मालूम है कि पाप कैसे खत्म करना होता है, बाबा की याद से एक तो, और प्लस बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया के आत्माओं का भी पाप आपको ही खत्म करना है। और वो कैसे, जब हम किसी के लिए सुभावना रखते हैं, रहम रखते हैं, तो उन आत्माओं का पाप खत्म होगा। जितना जितना हम सुभावना रखेंगे उतना उतना क्या होगा, पाप खत्म होता जाएगा, है ना। तो इतना हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका सारा तरीका कितना, बस गुड विशेष। तो इस तरह से जब हम आत्माओं को मदद करेंगे उनको पावन बनने में, तो ये तो बाप समान कार्य हो जाते हैं ना, कर्म हो जाते, फिर वो आत्मा आपको द्वापर से भूलेगी नहीं। तो इसलिए हमें हमेशा ये इस बात की स्मृति हो कि हमें जो पूजा करेंगे वो अलग बात है, लेकिन जो हमें पूजा हमारी क्यों करेंगे वो, उसके लिए हमें कर्म करना है उसके आधार पर, ठीक है। और बोलिए, जी जी जी, और बोलिए। क्या होता है गुजरात के लिए, क्या कहा बाबा ने, तो इसमें क्या है, निपुण होते हैं तो क्या है? इसमें क्या पॉइंट है, हाँ ये होता है कि डांस कौन कर सकता है, हल्के होंगे, और जो भारी होंगे वो नहीं करते हैं। डांस कौन कर सकता है, तो तन से, तन से आप अब सोचे आप हल्के हैं या मोटे हैं, इससे लेना देना नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी स्थिति किसकी है? मन की, है ना। कोई कितना भी मोटा व्यक्ति हो वो भी झूमता तो है कम से कम। कोई अच्छा गीत सुनेगा, अच्छा डांस देगा, झूमेगा तो कम से कम। जो कमजोर है बिल्कुल, हल्का भी है, मान लीजिए हल्का भी है कोई, और दुखी है, उदास है, तो झूमेगा वो? तो जो जितना ही मन से जितना हल्का है ना, वो डांस करेगा। और जो डांस करेगा, तो जैसे बाबा ने गरबा का भी एग्जाम्पल दिया ना, उसमें क्या होता है? रास, है ना, मिलाते हैं, है ना। केवल एक डांस करना अपने ढंग से वो अलग चीज है, अकेले डांस कर लेना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूसरे के साथ मिला करके, है ना, रास से रास मिला करके। अकेले कोई काम कर लेना वो बहुत ईजी है, लेकिन किसी के साथ मिल करके, है ना। तो यही है ना रास। गरबा मीन्स क्या? हर कार्य में, हर कर्म में एक दो के सहयोगी बनना, है ना। दूसरी बात बाबा ने आज एक और कही कि हम कई बार करते हैं कोई भी कर्म जो बाबा कहते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि अमृत वेला, तो अमृत वेला भी कैसे करें? बाबा ने कहा हम अमृत वेला आके बैठ गए, बस हो गया, हो गया ये। तो इसी तरह बाबा ने कहा कभी कभी क्या होता है, नियम प्रमाण, है ना। जैसे आकर के अमृत वेला हम बैठ तो गए, लेकिन एक होता है जस्ट नियम प्रमाण, हम बैठ गए अमृत वेला, आधा घंटा बैठे और चले गए, हो गया अमृत वेला। अमृत वेला कैसा होना चाहिए? अमृत वेला भी कैसा होना चाहिए मालूम है? अमृत वेला कौन सा योग करना चाहिए, किसको मालूम है जी? तो अमृत वेला भी हमें कैसे करना चाहिए? बाबा कहते हैं कि अमृत वेला हमारी सबसे पावरफुल स्थिति होती है ना, इसलिए अमृत वेला बीज रूप अवस्था का अभ्यास करें। बीज रूप या ज्वालामुखी, या केवल अमृत वेला ही नहीं, बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि यदि आपको बैठ करके योग करने को मिलता है, जैसे अभी आपको कोई काम नहीं है, बैठ के आप योग कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा जब बैठ करके योग करते हैं तो साधारण योग नहीं होना चाहिए, पावरफुल बीज रूप या निरसंकल्प। निरसंकल्प मीन्स कोई संकल्प नहीं, एक दूसरा संकल्प भी नहीं, बस एक बाबा, है ना। तो बाबा कहते हैं एक तो ये विधि है कि एकदम पावरफुल बीज रूप या ज्वालामुखी, लेकिन अगर ये नहीं हो पाता है तो क्या करो? अगर ऐसा योग नहीं हो पा रहा, आपका बीज रूप भी नहीं हो रहा है, ज्वालामुखी भी नहीं हो रहा, तो क्या करो? तो बाबा ने कहा ऐसा भी नहीं होता है तो दूसरे नंबर का योग पकड़ो। दूसरे नंबर का बाबा ने कहा क्या? रू रिहान, है ना, बाबा से बात करो, है ना। दूसरे नंबर का, अभी देखो बाबा कितना चांस देते हैं और कितनी विधि बताते हैं। अब इससे बड़ा तो कुछ सहज उपाय हो ही नहीं सकता। देखो तीन विधि बाबा ने बताई, क्या तीसरी विधि तो कुछ करना ही बाकी नहीं रहा, लेकिन जस्ट उसके लिए हम बाबा ने एक बार हिंट दिया है। तो एक तो हुआ कि आप बीज रूप या ज्वालामुखी स्थिति का अभ्यास करें, तो ये है प्रॉपर अमृत वेला, जो बाबा ने कहा कि समय प्रमाण। दूसरा अगर ये नहीं होता है तो रू रिहान। तीसरा अगर आपका योग ही नहीं लगता है अमृत वेला, कुछ भी नहीं हो रहा तो क्या करो। या आप शाम के योग में भी बैठे हैं, दिनचर्या प्रमाण योग में बैठ गए और योग नहीं लग रहा है तो क्या करें। एक तो बीज रूप रूर यहां, चलो तीनों लोगों का सैर, लेकिन सैर भी नहीं हो रहा, आप क्या करें बताइए। किसी की बुद्धि एकदम काम ही नहीं कर रही अभी तो क्या करें। वो भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा तो जी वो दूसरे नंबर पर आ गया। तीसरा आपका योग लग ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है पत्र, लेकिन बाबा ने वो योग में बैठे हैं ना आप, उस समय वो भी लिखना भी नहीं है, आप लाल लाइट में लिखते रहेंगे भी तो अच्छा नहीं माना जाता ना। हाँ भाई जी ने सही बताया, बाबा ने ये मुरली में कहा है कि अगर आप योग में बैठ गए हैं, योग चल रहा है, जैसे एक टाइम होता है ना दिनचर्या, जैसे शाम को 6:30 से 7:30 अमृत वेला इतने से इतना, तो जब योग में बैठ गए हैं योग नहीं लग रहा है तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं उठ के चले जाओ, योग नहीं लग रहा है तो भी बैठे रहो, केवल बैठे रहो। तो क्या होगा, उठ के आप चले जाएंगे तो रोज जाने के भागने की आदत हो जाएगी, आज भी भागेंगे, अच्छा आज भी योग नहीं लग रहा फिर चलते, फिर तो रोज जाते ही रहेंगे। बैठने से क्या होगा, आज योग नहीं लगेगा, कल नहीं लगेगा, परसों तो लग जाएगा ना रोज बैठते बैठते। तो ये बाबा ने तीन विधियां बताई, लगभग तीन विधि, एक तो विधि तो नहीं कहेंगे लेकिन लाइट नहीं रहना इस बात में दिनचर्या में। तो अब इतना अच्छी पढ़ाई तो कोई पढ़ा नहीं सकता ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बाबा थर्ड में यही कहते हैं कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो भी ठहरो। हाँ ये भी बोलते रहे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। तो इस तरह से हमें हर, जैसे कहा अमृत वेला ऐसे करो, ऐसे मुरली भी कैसे सुनो, मुरली भी जैसे बताया जो बाबा ने कहा है कि अनुभवों में खोना है ना, चाहे उसका स्वरूप बनना, जो ही बाबा सुनाते जा रहे हैं, जो भी बात बाबा ने सुनाया उसी समय उसका विजन देखते जाओ, वो स्थान देखो, बाबा जो बोल रहे हैं, कर्म भी करो, तो कर्म द्वारा हमें क्या बनना है, तो बाबा ने कहा ना जब आप कर्म द्वारा क्या बनते हैं, महादानी, हर कर्म में हम जब महादानी बन जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, तो डबल लाइट हो जाते हैं ना, डबल लाइट ऐसे तो होते हैं, एक तो लाइट का बॉडी फील करना और दूसरा आपके ऊपर कोई बहुत भारी जिम्मेदारी दे दे। आपको देखो जैसे 20 काम कोई कर दे कि आपको ये कराना है तो आपकी कितनी बुद्धि चलेगी, संकल्प, ये कराना है ये कराना वो कराना है, आप खुद रिस्पांसिबल है, काम कम करेंगे लेकिन थक जाएंगे कि ये भी कराना है ये भी कराना है। इसीलिए बाबा ने आज क्या कहा वरदान में, इसीलिए बाबा ने कहा वरदान में कि उसको क्या फील होगा, मुझे कोई शक्ति चला रही है ना, मैं रिस्पांसिबल हूं, मैं करा रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है, उसको रिस्पांसिबल बाबा है। तो आप जब कोई कहेगा अरे आप तो अपना काम करो हम देख लेंगे हम आ गए, जैसे आपको कोई 10 काम दे के जाए कि ये देख लेना जरा, और वो अचानक आ जाए आप सोचेंगे अच्छा अभी तो मुझे ये भी देखना है, और अचानक लौट के आए और आके कहे आपको मैं आ गया हूं अभी आप अपना काम कर सकते हैं, आप कितना हल्का हो जाएंगे है कि नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हम हर एक जिम्मेदारी बाबा पर रखते हैं और रियली बाबा ही जिम्मेदार है तो हम क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। हम फील करते हैं कि बाबा हमको चला रहा है, बाबा हमारे द्वारा करा रहा है ना। तो इसलिए हमें कहीं भी, मुख्य बात यह है कि कभी भी कोई भी बात हो जाए दिल शिकस्त नहीं होना है ना, हिम्मत नहीं आना। अगर आपके पास हिम्मत है, हिम्मत बहुत, हिम्मत है तो ही आप बाबा को भी याद कर सकते हैं, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज है हिम्मत, हम कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमेशा हमें अपनी दिनचर्या में केवल नियम प्रमाण नहीं, जो बाबा कहते हैं ना नेमिनाथ, नियम प्रमाण नहीं, लेकिन उसमें क्या करना है, फोर्स भरते जाना है। जो आज हमारी दिनचर्या में स्थिति है, कल उससे भी आगे हो, आगे ही बढ़ते जाना है।